पृष्ठ संख्या 186। दरअसल यह विचारणीय है कि जिस ऐतिहासिक पहचान और समझ को निराला ने नए पत्ते की उक्त कविताओं में वाणी दी, जिस तरह की नई काव्य रचना में लगातार वह संलग्न रहे और जो कविताएं काव्य आभिजात्य से मुक्ति अद्वितीय उदाहरण मानी जा सकती हैं, उनकी संवेदनागत विशिष्टता तथा भाषिक संरचना के बारे में निराला ने कहीं कोई संकेत क्यों नहीं दिया, और परिमल की छंद मुक्त कविताओं को ब्रैकेट में जो अधिकांशतः पारंपरिक और सांस्कारिक हैं ब्रैकेट बंद ही मुक्त कविता का उदाहरण क्यों मानते रहे? ऐसा क्यों हुआ? कवि के मानस की यह छानबीन शायद बहुत उपयोगी नहीं साबित होगी। लगता है कि इस तरह की कविताएं अधिसंख्यतः जिस काल में रची गईं ब्रैकेट में 38 से 46 तक ब्रैकेट बंद, तब तक निराला को अपने बचाव में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं रह गई थी। वह अपने हठ और तेजस्विता और अक्खड़पन से अपनी धाक जमा चुके थे। शायद इसीलिए कुकुरमुत्ता के पहले संस्करण में जियाफत शीर्षक से दी गई छोटी सी भूमिका में वह कहते हैं कि इसमें वही शामिल होंगे जिन्हें बुलाया नहीं गया। अर्थात इस कविता को निपट भोले सीधे सादे परंपरागत काव्य संस्कारों से रहित जनसाधारण ही सराहेंगे, इसमें शामिल होंगे, लेकिन जिस विद्वत वर्ग को बुलाया गया है वह इसे तिरस्कृत करेंगे। इसीलिए इस भूमिका में निराला अकड़े हुए हैं, जबकि इसी कविता के दूसरे संस्करण में उन्होंने पहले संस्करण की यह भूमिका निकाल दी है और पाठकों तथा विद्वानों द्वारा समादृत होने के कारण वे दूसरी भूमिका में काफ़ी विनम्र दिखाई देते हैं तथा भविष्य में ऐसी और रचनाएं लाने का वादा करते हैं। संभवतः उपेक्षित के उन्नयन या सामान्य की प्रतिष्ठा की जो सांस्कारिक स्वभावगत निष्ठा उनके भीतर वर्तमान थी, उन्होंने उसे सहज ही मान लिया था। बेला या नए पत्ते की प्रस्तावनाओं में भी उन्होंने विशेष कुछ नहीं कहा है, जबकि वह दोनों कृतियां परिमल से भी अधिक महत्वपूर्ण भूमिकाओं की अपेक्षा रखती हैं। लेकिन लगता है निराला अपनी रचनात्मक और साहित्यिक विजय को पहचानते हैं और अपने बचाव पक्ष में कुछ भी कहने की ज़रूरत महसूस नहीं करते, जबकि वह परिमल में अपने विरोधियों को बड़े ऊंचे अध्ययनशील वैचारिक स्तर से जवाब देते हैं। बेला के आवेदन में सिर्फ वह पाठकों को हिंदी मार्जित करने और पृष्ठ संख्या 187 उनको फायदा पहुंचाने की बात करते हैं तथा ब्रजभाषा में तुतलाते हुए लोगों को उसी के समकक्ष खड़ी बोली के गीतों की चुनौती फेंकते हैं। नए पत्ते की प्रस्तावना में हास्य की प्रचुरता है और भाषा के बोलचाल के रूप की ओर जरूर संकेत करते हैं, लेकिन साहित्य रचना में गली मोहल्ले की भाषा की यह पैठ क्यों और कितनी सार्थक है इस संबंध में कुछ भी नहीं कहते हैं। जैसा कि मैंने कहा, संभवतः निराला को इन रचनाओं तक आते आते यह विश्वास हो गया है या उनका आत्मविश्वास इतना सुदृढ़ और निसंशय हो गया है कि वह समझ चुके हैं कि वह जो कुछ भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं और उनका विरोध किसी के बस की बात नहीं रह गई है। इसीलिए वह बड़ी ऊंचाई से पाठकों की हिंदी परिमार्जित करने की बात करते हैं और ब्रजभाषा में तुतलाने वालों के समक्ष अपने गीतों की चुनौती फेंक देते हैं। वह संभवतः अपने को सर्वस्वीकृत मान चुके हैं और कविता के आभिजात्य प्रसंगों से अपने ही द्वारा संपूर्णतः मुक्त कराए जाने के इस सफल प्रयास के बारे में कुछ भी कहना जरूरी नहीं समझते। इस संबंध में निराला के ऊपर मार्क्सवादी प्रभाव और तत्कालीन प्रगतिशील आंदोलन के प्रभाव की चर्चा बार बार की जाती है। प्रगतिशील आंदोलन के आलोचकों का यह निःसंशय मत है कि निराला को ब्रैकेट में पंत की तरह ही ब्रैकेट बंद इस तरह की नई संवेदना की कविताएं लिखने की प्रेरणा प्रगतिशील आंदोलन से ही मिली और कुकुरमुत्ता तथा नए पत्ते संग्रह की रचनाएं इसी प्रगतिशील आंदोलन का प्रतिफलन है। कुछ वर्षों पहले कुकुरमुत्ता के नए संस्करण की भूमिका लिखते हुए मैंने कविता के माध्यम से इसकी छानबीन की तो मुझे इस कथन में सच्चाई कम और भावुकता अधिक लगी। उन दिनों प्रगतिशील आलोचकों ने निराला पंत, बच्चन, अंचल, गिरिजा कुमार से लेकर तुलसीदास और कबीर तक को अपने प्रगतिशील आंदोलन से जोड़ लिया था। जैसा कि मैंने कहा, निराला के भीतर उपेक्षित के उन्नयन और सामान्य की प्रतिष्ठा का भाव स्वभावगत है, वह उनके पूरे व्यक्तित्व में रचा हुआ है। उसे मैं निराला के व्यक्तित्व की सांस्कारिक निष्ठा कहता हूँ। इस काव्य संवेदना की अधिकांश कविताएं उनके व्यक्तित्व की इसी सांसारिक निष्ठा का प्रतिफलन है। इसीलिए कुकुरमुत्ता की भूमिका में मैंने लिखा कि निराला की कविताओं और कुकुरमुत्ता की इससे अधिक भ्रामक व्याख्या और कुछ भी नहीं हो सकती कि वह मार्क्सवादी चिंतन का प्रतिफलन है। निराला की इस सर्वथा नवीन काव्य संवेदना के अब और अधिक गहरे अध्ययन के पश्चात मुझे लगता है कि इतिहास की इस गहरी समझ और भारतीय जनसाधारण की यथार्थ स्थिति के इतने सूक्ष्म निरीक्षण पृष्ठ संख्या 188 में मार्क्सवादी चिंतन का कुछ न कुछ प्रभाव निराला पर अवश्य है। इस विचारधारा के आलोक में उपेक्षित की पक्षधरता की उनकी व्यक्तिगत निष्ठा और मजबूत हुई है। इसके आलोक में अपने ही अंदर बसी हुई इस रचनात्मक मानसिकता की पुनर्पहचान निराला ने की है। वह इसके प्रभाव में बह नहीं गए हैं, बल्कि उनको अपनी रचना प्रक्रिया के इस क्रियाशील रूप को परखने में मदद मिली है। इसीलिए इस संवेदना की कविताएं मात्र नारेबाजी नहीं लगती, वह सर्वांत एक गहरी आंतरिक अनुभूति से अनुप्राणित दिखती हैं। इसीलिए कुकुरमुत्ता या नए पत्ते संग्रह की रचनाओं को मार्क्सवादी प्रभाव का प्रतिफलन न मानकर उस चिंतन के आलोक में अपनी ही काव्य संवेदना की पुनर्पहचान और आत्मविश्वास के साथ उनकी अभिव्यक्ति का प्रतिफलन मानना अधिक उचित लगता है। वर्ग विरोध और ऐतिहासिक संदर्भों में वर्ग चेतना की इतनी तीखी अनुभूति और उसमें दलित शोषित वर्ग की पक्षधरता इन कविताओं में अभिव्यक्त ये तत्व मार्क्सवादी चिंतन के आलोक में ही पहचाने गए हैं। संपूर्ण भारतीय इतिहास में राज्य की पहचान और जनसाधारण का लगातार इस राज्य के किले की रक्षा में इस्तेमाल होते जाना इस नुक्ते की गजब की पकड़ तथा निराला के व्यक्तित्व की आंतरिक संगति एकतनता और मार्क्सवादी चिंतन के आलोक में सफलता से उसे समझ लेना ही उनकी इस भावधारा की कविताओं को इतना सशक्त और प्राणवंत बनाता है। इस संबंध में आगे हम उनकी इस भावधारा की कविताओं पर विचार करते हुए और अधिक विस्तार से लिखेंगे। ऐतिहासिक नुक्ते की इस सही पहचान और उसकी अभिव्यक्ति का प्रतिफलन निराला की जो कविताएं हैं वह सभी एक ही तरह की नहीं हैं। उनमें संवेदनागत एकतनता तो सर्वत्र है, लेकिन भाषिक संरचना और छंद अनुशासन या छंद मुक्ति की दृष्टि से उनमें काफ़ी भिन्नता और वैविध्य झलकता है। लेकिन वह सब मिलाकर निराला द्वारा हिंदी कविता को सभी स्तरों पर उसके आभिजात्य, उसकी संवेदनागत और शिल्पगत पारंपरिकता तथा उसके ऐश्वर्यवादी उच्च कुलोद्भव वैशिष्ट भाव से मुक्ति दिलाने के सफल प्रयास के फलस्वरूप उद्भूत हैं। जैसा कि ऊपर मैं विचार कर चुका हूँ, निराला की कविता की मुक्ति संबंधी विचारधारा को मैंने अप्राप्त और अपूर्ण माना है। सिर्फ छंद मुक्ति से कविता की मुक्ति संभव नहीं है, बल्कि अभिजात संस्कारों से उसकी मुक्ति तभी संभव है जब वह संवेदना के स्तर पर पहले मुक्त हो। उसके बाद वह अपने छंद अनुशासन से अवश्य मुक्त कर लेगी। अगर नहीं भी करती तो भी कुछ हद तक वह काव्य आभिजात्य से मुक्ति के उदाहरण स्वरूप उद्धृत की जा सकती है। ऐसा निराला के साथ भी हुआ है, लेकिन जहाँ संवेदनागत मुक्ति नहीं है, उस कविता को आभिजात्य से मुक्ति के उदाहरण के रूप में हम पेश नहीं कर सकते। पृष्ठ संख्या 189। जैसा कि हम विचार कर चुके हैं, जूही की कली या उस तरह की बहुत सारी कविताएं अपनी छंद मुक्ति के बावजूद काव्य मुक्ति के उदाहरण स्वरूप नहीं रखी जा सकती। वे अपने संपूर्ण संस्कार में रीतात्मक पारंपरिक कविताएं ही हैं और हजारों वर्ष की भारतीय कविता की अभिजातता का ही एक उदाहरण है। ऐसी स्थिति में निराला द्वारा रचित इस भाव संवेदना की उन्हीं कविताओं को मैंने काव्य अभिजात्य से मुक्ति के प्रयास के उदाहरण रूप में अपने अध्ययन का विषय बनाया है, जो ऐतिहासिक पहचान के इस नए नुक्ते पर अपनी संवेदना के स्तर पर सबसे पहले मुक्त हैं, चाहे वह छंद अनुशासन से मुक्त हो या ना हो। इसीलिए मैंने कहा कि संवेदनागत मुक्ति के बावजूद भाषिक संरचना छंद और विचारगत भिन्नता के कारण निराला की इन कविताओं में काफ़ी वैविध्य है। अध्ययन और विश्लेषण की सुविधा के लिए इस वैविध्य को हम तीन धरातलों पर रेखांकित कर सकते हैं। एक, वह कविताएं जो विषय वस्तु संवेदना और छंद अनुशासन से मुक्त हैं, लेकिन जिनकी भाषिक संरचना में छायावादी शिल्प और ऐश्वर्यवादी अभिजात शब्दबंध बार बार घुसपैठ करते हुए दिखाई देते हैं। संपूर्ण कविता की संरचना में यह द्वैत तथा शब्दबंध की घुसपैठ संवेदना के धरातल पर भी अभिजात्य का हल्का सा आभास कहीं कहीं देती है, लेकिन यह आभास इतना क्षीण है कि आसानी से पकड़ में नहीं आता। परिमल की विधवा, दीन, संध्या सुंदरी, अनामिका की मित्र के प्रति दान, प्रगल्भ प्रेम, तोड़ती पत्थर और वह किसान की नई बहू की आंखें इस श्रेणी की कविताओं के उदाहरण हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि काव्य आभिजात्य से मुक्ति के प्रारंभिक प्रयास में भाषिक संरचना का यह द्वैत निराला की इस भावधारा की कविताओं में निरंतर विद्यमान है, और कभी-कभी और कहीं-कहीं यह संवेदनागत मुक्ति में दरार भी डालता है। भिक्षुक कविता इस प्रारंभिक प्रयत्न में एक अपवाद है। मित्र के प्रति यह दान भी छंदयुक्त कविताएं ही हैं। दो, ये कविताएं जिनमें संवेदनागत विषयगत और भाषिक संरचना संबंधी पूर्ण मुक्ति विद्यमान है, लेकिन छंद मुक्ति की जगह छंद अनुशासन उनमें फिर लौट आया है। आश्चर्य यह होता है कि कविता की जिस मुक्ति के लिए निराला छंद मुक्ति को इतना आवश्यक बल्कि लाजमी मानते हैं, वह छंद मुक्ति यहाँ इन कविताओं में नहीं है, बल्कि एक मंजा हुआ छंद अनुशासन है। फिर भी विषयगत, संवेदनागत और भाषिक संरचना के स्तर पर पूर्ण मुक्त होने के कारण यह छंद अनुशासन इनकी विशिष्टता में कोई बाधा बनता सा नहीं लगता है। इसीलिए मैंने संवेदनागत मुक्ति को ही काव्य की मुक्ति की पहली शर्त माना है। अरिमा की यह है बाजार मेरे घर के पश्चिम सड़क के किनारे, चूंकि यहाँ दाना है जैसी रचनाएं, कुकुरमुत्ता नामक लंबी कविता बेला संग्रह की पृष्ठ संख्या 190, बहुत सारी गजलें साथ न होता, अरे गंगा के किनारे काले काले बादल आए, बंदी गृह वरण किया, बेश सूखे अधर रूखे भीख मांगता है, मुसीबत में कटे हैं दिन, जिन्होंने ठोकरे खाई, जल्द जल्द पैर बढ़ाओ, गली गली हाथ पसारे, और कैसी यह हवा चली जैसी कविताएं, नए पत्ते की खजोहरा, प्रेम संगीत, गरम पकौड़ी, आराधना की, ऊंट बैल मानो जहां खेत जोत कर महकी साड़ी जैसे जोबन धान कूटता है, और खिरनी के पेड़ तले अर्चना की आशा आशा मरे, तथा सांध काकली की गहरी बिभावरी शीत की इत्यादि कविताएं इस वर्ग में रखी जा सकती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि बात में अचेतन रूप से ही सही निराला ने संवेदनागत और भाषिक संरचना की मुक्तता को काव्य की मुक्ति के संदर्भ में अधिक महत्व दिया, और छंद मुक्ति से फिर वह छंद अनुशासन पर लौट आए, अथवा कविता की मुक्ति के संदर्भ में उसे उन्होंने तीसरे स्थान पर रखा है। तीन, वह कविताएं जो विषय वस्तु भाषिक संरचना संवेदना और छंद सभी प्रकार की प्राचीन पारंपरिक रीत्यात्मक रूढ़ियों से मुक्त हैं, अर्थात यही कविताएं काव्य आभिजात्य से मुक्ति के प्रयास में लिखी गई निराला की सफल रचनाएं कही जा सकती हैं। इन्हीं कविताओं में आकर निराला की वर्गगत भावना स्पष्ट हो उठी है, और वह सर्वहारा की संपूर्ण पक्षधरता में उठ खड़े होते दिखाई देते हैं। इनकी भाषिक संरचना में गद्यात्मक प्रवाह का पूर्ण समावेश तथा व्यंग्य, विनोद और प्रत्यक्ष अर्थ की करारी मार दर्शनीय है। नए पत्ते संग्रह की अधिकांश कविताएं इसका उदाहरण हैं। इस उपर्युक्त वर्गीकरण और पृथक पृथक रेखांकन को बहुत संकीर्ण मन से नहीं ग्रहण करना चाहिए। यह सिर्फ विश्लेषण और विचार की सुविधा के लिए किया गया है, और इसमें लचीलापन संभव है। हो सकता है इधर की दो एक कविताएं कोई पाठक उधर रखना चाहे, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।